हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदुओं की, हमेशा असली चीज को छोड़ के पता नहीं क्यों नकली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। अब राम की कथा में वाल्मीकि कहीं छूट गया, वाल्मीकि रामायण। अब हम राम कथा जानते हैं अपने पड़ोसी के लिखे हुए काव्यों कविताओं से, हम कृष्ण के बारे में जानना है तो व्यास रचित ना महाभारत पढ़ते हैं ना गीता पर ध्यान देते हैं। जो ऑथोरिटेटिव है, जो प्रामाणिक है, जिनको पढ़ने से सुनने से जानने से हम अपनी इतिहास को अपनी संस्कृति को ज्यादा ऑथेंटिकली जान सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो हमारे संस्कृति में जो बुराइयां हैं इन चीजों के नाम पर, रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर, वेदों के नाम पर, वो भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कितनी गलत फहमियां इन चीजों के नाम पर फैली हुई है। मिडिल एज में, मध्य युग में, मुगलों के आने के बाद भारत में जो एक तरह के भक्ति आंदोलन चला, भक्ति मूवमेंट, उसमें बहुत सारे अलग अलग रीजनल भाषाभाषी कवियों ने, संतों ने भी रामायण पर अलग अलग काव्य लिखे, जिसमें नॉर्थ इंडिया में हिंदी में प्रसिद्ध है रामचरितमानस। कुछ लोगों को गलतफहमी होने लगा कि यही है रामायण, ये ट्रांसलेशन है, और अलग अलग ढंग से लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है। पर जो राम की कथा है वो वाल्मीकि की रामायण से प्रस्तुत है, तो हम उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रामायण कैसे बना, महर्षि वाल्मीकि एक ऋषि है, वो कवि कैसे बना, उस पर एक छोटी सी कहानी है खुद रामायण में ही। अगली स्लाइड लगाएंगे। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में एक दिन नहाने के लिए आश्रम के किनारे सरजू नदी के किनारे जाते हैं। नहाकर जब वापस आते हैं, देखा एक निषाद, एक हंटर, शिकार करने वाला, वो आसपास में बैठे हुए दो क्रौंच पक्षी, जिसको क्रेन कहते हैं, जिनके लंबे चोंच है, वो एक दूसरे से बड़े प्यार में डूबे हुए थे। और उस हंटर ने, शिकारी ने अपने बाण से, तीर से, वो जो कपल थे उनमें से जो पुरुष पक्षी था उसको बाण से मारा और वो छटपटा करके नीचे गिरा। स्त्री पक्षी रोने लगी और वाल्मीकि ने जब उस रोई हुई रोती हुई स्त्री पक्षी को देखा, छटपटाते हुए उस पुरुष पक्षी को देखा, उनके अंदर की दया भाव, उनके दिल द्रवीभूत हुआ और वो शिकारी की ओर बड़े गुस्से के नजर में देख करके वो शाप देने लगे। और क्या बोला? मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधी काम मोहितम। हे निषाद, हे हंटर, तुम जिंदगी में कभी भी शांति नहीं पाओगे, खुशी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने एक निरीह बिचारे इनोसेंट पक्षी को मारा, वो भी जब वो काम मोहित था, जब वो इन पैशन में, अपनी पत्नी के प्रेम में इन्फेक्चुएटेड था, उस समय तुमने मारा, इसीलिए जिंदगी में तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। वाल्मीकि ने कहा, उनके साथ उनके शिष्य थे, उन्होंने भी सुना शाप को, पर उस शाप देते समय एक अजीबोगरीब बात उनके शिष्यों ने नोट किया कि उनके गुरु जो ऋषि है, जो शाप देते, शाप तो जनरली सीधा बोलते हैं भस्म हो जाओ जो भी है, पर उस शाप की जो सेंटेंसेस था, जो जो वाक्य था, उसमें एक रिदम था, उसमें एक लय था, जो श्राप तो था पर सुनने में मीठा लगा। उन्होंने आश्रम में जाकर के ऋषि से कहा, वाल्मीकि से आपने जो बोला वो एक आम वाक्य की तरह नहीं था, उसमें गुस्सा था पर वो उसमें मिठास भी था। वाल्मीकि ने दोबारा उसको याद किया उस सेंटेंस को और वो गाया जाता था। ये पहली बार ये श्लोक है संस्कृत लिटरेचर में, भारत की लिटरेचर के हिस्ट्री में, जिसमें मीटर लगा, किसमें छंद था और जो ऑटोमेटिक अपने आप मन से निकला था। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपके अंदर तो कवि की प्रतिभा है, आप ऋषि तो हैं पर आपकी जो गॉड गिफ्टेड जो आपके पास कुछ है वो है कि आप कविता लिख सकते हैं, जो गाया जा सके आप लिखिए कुछ। धीरे धीरे वाल्मीकि ने कोशिश किया, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से कविताएं निकलने लगी। उनके साथियों ने, उनके मित्रों ने, ऋषियों ने वाल्मीकि ऊपर प्रेशर डाला कि आप ऋषि हो, ज्ञानी हो, साधना करते हो और आपके अंदर ये कला है कविता लिखने की, तो आप कुछ लिखते क्यों नहीं हो, कुछ बड़ा क्यों नहीं लिखते हो। वाल्मीकि ने सोचा क्या लिखूं, किस पर लिखूं, कैसे लिखूं, कोई प्रोफेशनल पोएट तो थे नहीं कि किसी प्लॉट पर रिसर्च किया या चोरी करके लाया, उसको लिखा, बाजार में बेचने लग गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। लिखना हो तो कुछ अच्छा लिखो, किसी अच्छे व्यक्ति पर लिखो, कुछ अच्छा प्लॉट मिले। ये बात हो गई, काफी दिन बीत गए। एक दिन महर्षि नारद की जो प्रसिद्धि है कि वो घुमक्कड़ है, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, हर जगह जाते हैं और दुनिया का हर खबर उनको पता होता है। इधर की बातें इधर करना, उधर की बातें उधर करना उनका स्वभाव है। एक दिन नारद जी वाल्मीकि के आश्रम में आए, वाल्मीकि ने उनके सत्कार की, पूजा की, अर्चना की, अतिथि का जो सत्कार होता है के बाद पूछा, अगले स्लाइड, कि आप तो बड़े घूमने फिरने वाले ऋषि हैं, आप हर राज्य को जानते हैं, हर तरह के लोगों को, देवताओं को, असुरों को, राक्षसों को, हर ज्योग्राफी को, हर तरह की चीजें आपको पता होता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति के बारे में कुछ बताइए जिस पर मैं कुछ सोचूं। तो क्या पूछा? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगमम्। तप और स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी में डूबा हुआ नारद को वाल्मीकि ने पूछा, कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञाश्च कृतज्ञाश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कौन ऐसा व्यक्ति है जो एट प्रेजेंट, इस समय, वर्तमान में, मुझे किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानना, किसी इतिहास के पुरुष के बारे में नहीं जानना, आगे कौन आएगा उसके बारे में नहीं जानना, मुझे किसी दिव्य डिवाइन पुरुष के बारे में नहीं सुनना, मुझे ऐसा एक व्यक्ति के बारे में बताओ जो अभी हो, इंसान हो, हमारे आपके बीच में कहीं हो और उसमें ये क्वालिटीज हो। क्या क्वालिटी हो? वो गुणवान हो, उसमें कुछ क्वालिटीज हो, उसमें वीर्य हो, वो धर्म को समझता हो, उसमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हो, वो सत्य बोलने वाला हो, अपने संकल्प पर दृढ़ रहने वाला हो। चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कश्च समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सेल्फ रेगुलेटेड हो, अपने को कंट्रोल करना जानता हो, सभी प्राणियों का भला चाहता हो, ज्ञानी हो, दुनिया को, दुनिया का रूलर, दुनिया पर राज करने के लिए उसमें कैपेबिलिटी हो, देखने में बड़ा सुंदर हो, आत्मवान को जिता क्रोध हो, द्वितिमान को न सूयका। जिसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हो, जो दूसरों की बुराई नहीं करता हो, कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। पर जब लड़ाई के मैदान पर उसको गुस्सा आता हो, जब वो लड़ाई करता हो, तो बड़े बड़े योद्धाओं को भी पसीना छोड़ता हो। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम्। अगला स्लाइड। परम कौतूहलम् हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेव विधम नरम। मुझे ऐसा एक व्यक्ति के बारे में जानना है, हे महर्षि, आप ही ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप घूमते फिरते रहते हैं, दुनिया के हर न्यूज आपके पास होता है, तो आप ही बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जिसमें ये सारे क्वालिटीज हो। नारद चिंता में पड़े। अगली स्लाइड। ऐसा व्यक्ति दुनिया में बड़ा दुर्लभ होता है जिसमें सारे गुण हो, देखने में बड़ा सुंदर हो, पर डिप्लोमेसी भी जानता हो, लड़ाई के मैदान में सबसे बड़ा योद्धा हो, सत्य बोलने वाला हो पर प्रिय बोलने वाला हो। सच बोलना और मीठा बोलना यह भी बड़ा मुश्किल काम होता है, पर दोनों उसके पास हो, गुस्से को जीता हो, लड़ाई में एक्सपर्ट हो, बहुत सारे अपोजिट क्वालिटीज हैं, सब जगह नहीं मिलते, किसी में एक होता है तो किसी में दूसरा नहीं होता है। पर आपने पूछा तो मैं आपको बताता हूं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुनि वक्ष्या म्यहं बुद्ध्वा तैर्योक्तः श्रूयताम नरः। मैं बता रहा हूं आपको, ये बड़ा मुश्किल है ऐसा किसी व्यक्ति को ढूंढ पाना, ये बड़े दुर्लभ हैं, पर मैं आपको तब भी बता रहा हूं वो कौन है। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो, एक व्यक्ति है, पीछे ले जाओ, इक्ष्वाकुवंश में पैदा होने वाला है। इक्ष्वाकु सूर्य वंश का पहला राजा है। रामो नाम जनेई श्रुतः, राम नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, मतलब लोग उसको राम के नाम से जानते हैं। उसमें ये सारे क्वालिटीज आपको दिखेगा, और क्या क्या क्वालिटीज है। नियतात्मा महावीर्यो द्वितिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः। वो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ है, वो इंटेलिजेंट है, वो सेजियस है, एलोक्वेंट है, ग्लोरियस है, एक्स्ट्रा माइनोरेटर ऑफ फॉयज है। जो जो आपने क्वालिटीज पूछा वो उसी में मिलेगा। राम ने डिटेल में, वाल्मीकि ने पूरी विस्तार से नारद से राम की वो पूरी गुणावली को, गुणों की लिस्ट को सुना और मिसमराइज्ड हो गए, बड़े चकित हो गए, आश्चर्य अभिभूत हो गए, गदगद हो गए, लगा कि यही वो पात्र है, यही वो कैरेक्टर है जिस पर मैं कुछ सोचूं, कुछ लिखूं। आजकल के जो राइटर होते हैं उनको रिसर्च करना पड़ता है, एक जिस पर भी लिखना होता है वहां उनको जाना होता है, उस माहौल में रहना होता है। हमारे ऋषि मुनि लोग रिसर्च करके नहीं, वो अपनी साधनाओं से, तपस्या के बल से, अपने अंदरूनी तक शक्ति को बढ़ा करके, अपनी दिव्य शक्तियों से जानते थे। तो वाल्मीकि ने तपस्या के माध्यम से राम की जो पुरानी जो जो घटनाएं राम ने की है उन सबको देखा जाना, पता चला अभी वो अयोध्या में राजा है, ये उस समय की घटना है जब राम रावण को मारकर सीता को लेकर के अयोध्या में आ चुके थे। उनकी पत्नी सीता जंगल में घूम रही थी। अब वाल्मीकि ने अब इसी कहानी को आधार बनाकर अपनी रचना शुरू की। अगली स्लाइड, उन्होंने रामायण लिखा, राम कथा। रामायण का मतलब होता है राम का अयन, अयन मतलब मार्ग, द वेज ऑफ राम। राम किस रास्ते पर चलते थे, मतलब उनका सोच क्या था, उनका विचार क्या था, वो किस तरह बिहेव करते थे लोगों से, किस तरह वो खुद से व्यवहार करते थे, कैसे वो अपने रिलेटिव से बिहेव करते थे, यही राम कथा है। तो ये इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, उसमें दो चीजें थी। आधा कंट्रीब्यूशन वाल्मीकि का है, आधा कंट्रीब्यूशन राम का है। राम का चरित्र इतना इतना प्योस था, इतना पवित्र था। अब जो कुछ हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, वो सब लक्षण राम में दिखता था। दूसरी बात है कि वाल्मीकि की जो लिखने की शैली थी, जिस अंदाज में, जिस सरल भाषा में, जिस नाटकीय अंदाज में, जिस पोएटिक फॉर्म में उन्होंने राम को एस्टैब्लिश किया, ये दोनों रामायण को पढ़ते समय जो आनंद है, राम का चरित्र जो मोरलिटी या जो संदेश देता है, ये दोनों मिलाकर के रामायण को विश्वप्रिय बनाया। तो वाल्मीकि ने रामायण रचना की, रामायण की रचना पूरी हुई। अगली, अब रामायण लिख लिया। अब उन दिनों तो कोई मीडिया नहीं थी, बुक्स छापने के लिए कोई मशीन नहीं था, पब्लिक कैसे जाने कि इस काव्य को कोई पढ़े सुने जाने, कैसे जाने। लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सुनते थे लोग, बोलो सुनो। वाल्मीकि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे और उनमें से दो शिष्य थे राम के खुद के बच्चे लव और कुश। ये रामायण लिखने के बहुत सालों की बात है। जब सीता वाल्मीकि आश्रम में शरण ली थी और उनके दो संतान हुए लव और कुश जुड़वा, बड़े प्यारे थे, धनुर्धारी थे, उनकी चर्चा हम आगे करते जाएंगे। और वो बड़ा सुंदर म्यूजिक का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था। दोनों भाइयों को उन्होंने ये सारा रामायण कंठस्थ कराया, रटवाया, गवाया और वो घूम घूम करके इनको लेकर के अयोध्या के गलियों में, रास्तों में उसको गाते थे। एक तो वाल्मीकि की रचना है, राम की कथा है और लव कुश की गला है, गाने की शैली है। ये तीनों, जिसने भी इसको सुन, जो भी इसको सुनता था वो अभिभूत होता था। धीरे धीरे अयोध्या में ये प्रसिद्ध हुआ, ये रामायण राम के चरित्र पर लिखा हुआ, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और लव कुश के द्वारा गाया गया रामायण धीरे धीरे प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। वो रामायण कथा क्या है, ये जो रामायण है ये सात कांडों में है। कांड मतलब बुक या चैप्टर। ऐसा माना जाता है पहला बाल कांड और आखिर उत्तर कांड, ये लेटर एडेड है, ये बाद में इसमें जोड़ दिया गया। दुनिया के ज्यादातर जो पुराने स्क्रिप्चर होते हैं उसमें छेड़खानी बहुत किया जाता है, ये सिर्फ नहीं कि भारत में, दुनिया में हर जगह बाद के लोग उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ हटा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाल कांड जो पहला कांड और जो अंतिम कांड उत्तर कांड, ये दोनों प्रक्षिप्त है, मतलब लेटर एडेड है। पर तब भी हम दोनों को मिलाकर के आगे चलेंगे और उस रामायण की कथा के अनुसार आगे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगली स्लाइड, अब सीधे रामायण पर आते हैं। कोशल नाम का एक देश है, देश का नाम है कोशल, उसकी राजधानी है अयोध्या। कोशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। कोशल नाम का राज्य किंगडम सरयू नदी के, आजकल जिसको उत्तर प्रदेश में सरजू नदी कहते हैं, सरयू नदी के किनारे बहुत समृद्ध, बहुत प्रॉस्पेरियस, बहुत वेल्थी राज्य था। उस राज्य की राजधानी अयोध्या, जो कि बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उस अयोध्या के जितने भी राजा हुए, इक्ष्वाकु, रघु, दिलीप, दशरथ, बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं। ऐसी एक अयोध्या नामक नगरी में दशरथ नामक एक राजा था, बड़ा प्रसिद्ध था। उसका नाम दशरथ इसीलिए पड़ा था, कहते हैं उसकी जो रथ है, जो चैरियट है, वो दशो दिशाओं में, 10 डायरेक्शन में, 10 डायरेक्शन में, कहीं भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के जा सकता था। बाधा का मतलब उसको कोई शत्रु उसका नहीं था, वो किसी को भी हरा सकता था, वो दशो दिशाओं में कहीं भी जा सकता। ये उनकी खानदानी परंपरा है। इक्ष्वाकु से लेकर के दशरथ तक, राम और लवकुश तक, वो हमेशा दिग्विजयी रहे, हर डायरेक्शन में जहां भी जाते थे जीतते थे। बड़ा प्रजावत्सल था, अपने प्रजाओं को प्यार करने वाला राजा था। उनकी तीन पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 8 मंत्री थे, 2 पुरोहित थे, वशिष्ठ और वामदेव। उनकी एक बेटी थी, उसकी नाम थी शांता। किसी कारण से उनके पड़ोसी राजा रोमपाद को उन्होंने उसको अडॉप्ट करने के लिए दिया। वो रोमपाद ने उसको गोद लिया था, अडॉप्ट किया था, और उनके घर में कोई संतान नहीं था दशरथ के घर में। इसलिए उन्होंने सोचा अश्वमेध यज्ञ किया जाए। वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करिए। हजारों तरह के यज्ञ हमारे यहां वर्णन होते हैं, उसमें एक अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ होगा तो कौन कराएगा? कोई एक्सपर्ट चाहिए, जो यज्ञों का एक्सपर्ट हो, जो यज्ञों को, खास तरह के यज्ञों को करने वाला हो। तो पता चला कि ऋष्यशृंग नामक एक ऋषि हैं, वो इस यज्ञ में बड़े माहिर हैं, और वो कोइंसिडेंटली दशरथ के दामाद हैं, क्योंकि जो उनकी बेटी शांता, जो रोमपाद के घर में पल रही थी अडॉप्टेड डॉटर के रूप में, रोमपाद ने अपनी बेटी को ऋष्यशृंग ऋषि से शादी कराया था, विवाह कराया था, क्योंकि उनके राज्य में बहुत सालों तक अकाल पड़ा था, ड्रॉट जिसको कहते हैं आप, सूखा, और उसे उबरने के लिए ऋष्यशृंग ऋषि को उनके राज्य में बुला करके वर्षिष्ठ यज्ञ, जिसमें बारिश कराने का यज्ञ कराया गया था, जिसमें कितने सालों तक यज्ञ करने के बाद उस राज्य में बारिश वापस आया था, और प्रसन्न होकर के रोमपाद ऋषि ने अपनी बेटी को, अडॉप्टेड डॉटर को, शांता को ऋष्यशृंग के साथ विवाह कराया था। इसीलिए इनडायरेक्टली वो दशरथ के दामाद थे। ऋष्यशृंग ऋषि को समाचार भेजा गया कि ये आपको पता नहीं है, आपकी जिससे विवाह हुआ है वो दशरथ की बेटी है, और दशरथ चाहते हैं कि आप उनके यज्ञों में पुरोहित बने। वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के नेतृत्व में यज्ञ हुआ। यज्ञ में परिणाम स्वरूप तीनों रानियों के 3-4 पुत्र हुए, कौशल्या का राम, कैकेयी का भरत, और सुमित्रा के 2 संतान हुए जुड़वा, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। संतान धीरे धीरे बड़े होने लगे। मैं इसीलिए संक्षेप करता हूं कहानी को, क्योंकि पूरे रामायण आपको 1 महीने 4-5 सप्ताह में रखना है। जहां जहां मुख्य बातें होगी उसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। चारों भाई बड़े होने के बाद, 5-6-7 होने के बाद, उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुलों में पढ़ने के लिए गए। आपको पता है प्राचीन काल में राजा हो या गरीब हो, सबके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे, गुरु के अधीन में रहा करते थे। बाल शिक्षा पूरी हुई, गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हुई, वापस आए तो घर में चर्चा चली, अब इनकी शादी करानी है। शादी की चर्चा चली रही थी, लड़की ढूंढ ही रहे थे, महर्षि विश्वामित्र एक दिन अयोध्या में पहुंचे। दशरथ उनके मंत्रियों को पता चला महर्षि विश्वामित्र आए हैं, उन्होंने उनकी बड़ी आवाभगत की, सत्कार किया, ऋषियों का सम्मान किया। बोले आने का क्या प्रयोजन है? बोले मुझे आपके राम और लक्ष्मण दो भाई दो बेटे चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां राक्षस बड़े उत्पात मचाते हैं, बड़े परेशान करते हैं, हमारे यज्ञों को, यज्ञ कुंडों को तोड़ते हैं, यज्ञों को बर्बाद करते हैं, ऋषियों को मारते हैं, काटते हैं, यज्ञशालाओं पर, उन दिनों मंदिर तो होता नहीं था, यज्ञशालाएं हुआ करती थी, यज्ञशालाओं पर हड्डी फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं, ये सब रावण के भेजे हुए लोग होते हैं। ध्यान रखिए, राक्षस कोई ऐसा नहीं है कि जो 40 फुट ऊंचा है, 45 फुट चौड़ा है, 48 फुट लंबा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। राक्षस या असुर का मतलब होता है जिसका आचरण, जिसका व्यवहार दूसरों को नष्ट नुकसान पहुंचा के लिए होता है। आजकल भी जो बम फोड़ते हैं, दूसरों को मारते हैं, वही राक्षस हैं। देवता का मतलब होता है, देखिए दुनिया में दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद की परवाह नहीं करते हैं, उन्हें हम देवता कहते हैं, दानाद देवता, जो दूसरों के लिए होता है। एक वो लोग होते हैं जो खुद के लिए जीते हैं, जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत लोगों को सता देते हैं, पर जनरली नहीं करते, वो मनुष्य है, आम लोग हैं हमारे आपके तरह। तीसरे हैं उनको जरूरत पड़े न पड़े, उनको दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर ही मजा आता है, उन्हें हम राक्षस कहते हैं। ये एक सोसाइटी भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और ये हमेशा होते हैं तीन तरह के लोग। पर क्या है कि जो हमारे पुराण शास्त्र होते हैं, जिनको माइथोलॉजी कहते हैं, उसमें हर चीज को एक 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 खास इमेजिनेशन से उनको बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है, थोड़ा एंटरटेन के लिए। दुनिया में हर जगह राक्षस का कंसेप्ट होता है, बुरे लोग, जिसको आप क्रिश्चियनिटी पढ़ेंगे, इस्लाम के शास्त्र पढ़ेंगे, वो उसको डेविल कहते हैं, डेमोन कहते हैं, शैतान कहते हैं। ये शैतान या राक्षस उन बुरे लोगों के लिए होता है जो आम लोगों को जीने नहीं देते हैं, जो किसी भी अच्छे काम का विरोध करते हैं, किसी भी अच्छे काम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऋषि परेशान है, और हम छोटे मोटे ऋषि लोग, हमें तो इतनी ताकत नहीं, हम तो ऋषि रहे, छोटे मोटे राजा उनको हरा नहीं पाते हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, हमें राम और लक्ष्मण चाहिए लड़ने के लिए, हम उनको साथ ले जाएंगे। दशरथ ये सुनते ही उनका पसीना छूटने लगा, दिल कांपने लगा। बचपन में 5-6 साल के बाद बच्चे को गुरुकुल भेजना पड़ता है, 15-17 साल के बाद जब बच्चा घर आता है, मां बाप को पहली बार अपने बच्चों को देखने को मिलता है, 15-16 साल के बाद अपने बच्चों से वो मिलते हैं, इस आशा के साथ कि अब ये हमारे साथ 20-50 साल गुजारेंगे। अब घर आए, अभी अभी 2-4 महीने हुआ ही नहीं, फिर उनको जाना पड़ेगा, वो भी अभी अभी नए नए जवान हुए हैं, अब इनकी शादी करनी है, इतने खूंखार राक्षसों के साथ लड़ने के लिए जाना होगा। आप कहेंगे राम ही लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे, दशरथ ही क्यों जाएगा, उन दिनों कोई आर्मी और पुलिस सिस्टम तो नहीं होता था इतना, राजाओं के अपने सैनिक होते थे पर वो हमेशा सेनापति के नीचे लड़ते थे, बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए राजाओं को खुद जाना होता था या राजकुमारों को जाना होता था। दशरथ ने कहा मैं चलूंगा, मैं, मुझे एक्सपीरियंस है, आप मेरे बच्चों को क्यों लेना चाहते हो? मैं आपको बच्चों को ही मुझे लेना है, क्योंकि उनको राक्षसों को आपके बच्चों से मरवाना है, और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ जो मैंने सीखा है वो आपको बच्चों को सिखाना है। दशरथ के मना करने पर विश्वामित्र नाराज हुए। उन दिनों विश्वामित्र बड़े प्रसिद्ध थे, गुस्सेल ऋषि थे, पूरी तरह वो ऋषि बने नहीं थे, ऋषि बनने की प्रक्रिया में थे, उनको बड़ा गुस्सा जल्दी आता था, इसीलिए हर कोई उनसे डरा रहता था, कभी कोई शाप न दे डाले। दशरथ घबराए, वशिष्ठ से विचार किया और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए, अनेक राक्षसों को मारा, उनकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे, ताड़कासुर, मरीच, सुबाहु जो रावण के रिश्तेदार थे। मारने के बाद विश्वामित्र प्रसन्न हुए, बोले तुम दोनों सचमुच बड़े लायक बच्चे हो, और मैं तुम्हें जो बुलाया था राक्षसों को मारने के लिए इतना जरूरी नहीं था जितना मैं तुम्हारे बारे में सुना था। मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि ऋषि मुनि लोग आजकल के बाबाओं की तरह होते हैं जो आत्मा परमात्मा की चर्चा किया करते थे, ऐसा नहीं है। वो दुनिया की हर विषय का ज्ञान रखते थे। आप देखते हैं महाभारत में द्रोण ब्राह्मण था, गुरु था, ऋषि था, टीचर था, पर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े वीरों में सेकंड से, सबसे बड़े योद्धाओं में दूसरे नंबर पर था, भीष्म के बाद द्रोण का नंबर आता है। विश्वामित्र ने उसके बाद अगली स्लाइड, राम और लक्ष्मण को जितने भी उन दिनों के सोफिस्टिकेटेड मिसाइल के नॉलेज था वो सब उन्होंने राम और लक्ष्मण को सिखाया, जिसको आजकल हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। जो भी आर्चरी के धनुर्विद्या के जितने बड़ा सीक्रेट टेक्निक्स हैं उन्होंने उसको ट्रेंड किया। इसी बीच में जब विश्वामित्र के आश्रम में थे, उनको पता चला कि मिथिला पास में मिथिला राज्य था जिसका राजा जनक है। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि उनके पास एक बड़ा मजबूत धनु है और उनके अपनी बेटी सीता को शादी कराना है। उन दिनों शादी कराने के लिए स्वयंवर होता था, दो तरीके से लड़की के लिए लड़का चुना जाता था, या तो लड़की सारे लड़कों को घोषित करके बुलाया जाता था, उनको लाइन में बैठाया जाता था, लड़की खुद जाती थी चुनती थी, ऐसा नहीं कि शक्ल देख के चुन लेती थी, उसकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी नोट किया जाता था, बायोडाटा उसको पढ़ाया जाता था, सुनाया जाता था। जिनको लड़की की बायोडाटा भी सबको दी जाती थी, पूरे राज्य में घोषणा की जाती थी, अगर राजकुमारी है आसपास के जहां दूर दूर तक जितने राजकुमार हैं सब तक ये मैसेज पहुंचाया जाता था, आम लड़का या लड़की है तो आसपास के गांव में प्रचार किया जाता था, उनकी पूरी डिटेल्स उन लड़की की क्या योग्यताएं हैं भेज दी जाती थी, लड़कों की जो लड़के इंटरेस्टेड है उनकी सारी योग्यताएं लिस्ट बनाई जाती थी, वो लड़के आते थे लाइन में बैठते थे, लड़की और उनके सहेलियां और उनके जो असिस्टेंट है उस लड़की को वो समझाते थे ये है अमुक और इसके ये क्वालिफिकेशंस, ये योग्यताएं, ये कैपेबिलिटीज हैं, ये एबिलिटीज हैं, ये उनके खराब चीजें हैं, इसको बैड क्वालिटीज, ये गुड क्वालिटीज, इसके ऐसे ऐसे हैं। उसको पसंद है ठीक है नहीं वो आगे बढ़ता था, वो उनमें से लड़की लड़का चुनता था। वो तो हमें पता नहीं क्यों उसी भारत में जहां लड़कियां खुद लड़के चुना करते थे, सैकड़ों सालों से हम लड़कियों को जबरदस्ती लड़का थोपने की कोशिश किया, और लड़की अपनी मर्जी से लड़का चुने तो वो क्या कहते हैं उसको, ऑनर किलिंग के नाम पर खून खराबा आज भी होता है भारत में। एक दूसरी प्रक्रिया थी स्वयंवर के अलावा, ज्यादातर ये राजकुमार राजा घरानों में ये थी, कि खास तरह के कंपटीशन रखा जाता था लड़की के सलाह लेने के बाद। उस कंपटीशन में जो लड़का जीतता था लड़की उसको चुनती थी। जैसे अगर लड़की बहुत विदुषी है, ज्ञानी है, वो कहे कि नहीं मुझे शास्त्रार्थ करना है, मतलब मुझे डिबेट करना है, मान लीजिए अगर इंटेलेक्चुअल है, जो मुझे डिबेट में हरा दे तो मैं उसे शादी करूं। अगर वो बड़ा युद्धप्रिय है, वह वॉरियर टाइप की लड़की है, राजकुमारी है, जिसको लड़ाई में व फिजिकल पावर में बड़ा बड़ा इंटरेस्ट है, वो कहेगा जो खास तरह के लड़ाई के रखा जाएगा, जो इस चीज में आगे जीत जाए मैं उसको शादी करूंगी। जैसे आप महाभारत में देखते हैं द्रौपदी के शर्त था कि वो मछली के घूमते हुए मछली के आंखों में जो तीर लगा दे उसी से शादी करूंगी। तो सीता के स्वयंवर में ये शर्त था कि जो एक खास तरह के बहुत ही हेवी एक धनु था, वो उसको जो उसमें जो डोरी लगा के उसको तोड़ दे उससे सीता की शादी होगी। और ये बात कितने सालों से प्रचार था, बड़े बड़े योद्धा वीर राजकुमार आ करके वापस जा चुके थे। जनक परेशान थे कि कोई भी इस जो सीता के लिए हमने कुछ रूल्स रखा है उसको कोई नहीं फॉलो कर पाता है। विश्वामित्र के आश्रम में यह खबर पहुंचा, विश्वामित्र दोनों बच्चों को साथ लेकर के जनक के आश्रम राजधानी मिथिला में पहुंचे और उन्होंने परिचय दिया कि ये दशरथ के दोनों बेटे हैं और वो आपका जो शर्त है उसको ललकारने के लिए तैयार हैं। वो जो उसका नाम शिव धनु था और वो उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। जनक की जो बेटी सीता थी उसका नाम सीता क्यों है ये जानना बड़ी जरूरी है। जनक की सीता अपनी बेटी नहीं थी, वो एडॉप्टेड डॉटर थी। जनक जब खेती करते थे, अब कहेंगे राजा कैसे खेती करता था, जनक की अपनी एक हिस्ट्री है। जनक बड़े सन्यासी थे और वो आम आदमी से भी ज्यादा नीचे जाकर के काम करने वाले व्यक्ति थे। वो खुद जब अपने खेतों में हल चलाते थे, हल चलाते समय देखा कि किसी खेत में किनारे एक लड़की पड़ी हुई थी, रो रही थी। उस लड़की को उठाकर वो घर लाए, पालने लगे। सीता का मतलब होता है जो हल होता है, उस हल का जो 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 नोक है उसको उसको सीता कहते हैं संस्कृत में। वो श्लोक ऐसा है, अथ मे कृषत क्षेत्रम लांगुलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर अरोज फ्रॉम द ट्रैक ऑफ द प्लॉक शेयर, वो जो प्लॉक शेयर है, जो हल है उसकी जो ट्रैक है, जो 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 फाल है, उसको चलाते हुए रास्ते वो उसी किनारे मिला। एज आई वॉज प्लॉगिंग द प्लॉट सेट अपार्ट फॉर ए सेक्रीफाइस ए फीमेल बेबी हु वॉज डिस्कवर्ड वाइल ड्रेसिंग द फील्ड एंड एज सच वॉज वाइडली नोन बाय द नेम ऑफ सीता। सीता का मतलब होता है प्लॉक शेयर, हल की जो फाल है, क्योंकि हल चलाते समय वो मिली इसलिए उसकी नाम सीता पड़ी। उनकी अपनी बेटी उर्मिला थी। राम और सीता और सीता के विवाह के लिए राम और लक्ष्मण पहुंचे, दोनों का एक दूसरे का परिचय हुआ। जनक को शुरू शुरू में भरोसा नहीं हुआ, दो यंग बॉय हैं अभी, ये क्या इतने बड़े बड़े राजा योद्धा आकर के कुछ नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे। पर विश्वामित्र ने उनकी उनकी पिछले हिस्ट्री सुनाया, कितने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने कैसे मारा, कैसे जीता। तब जनक माने कि ठीक है। अगले दिन उनको धनु जहां रखा हुआ है सभा में ले जाने के लिए तैयार हुए। आगे की कहानी हम अगले बार सुनेंगे, राम और सीता का विवाह, उसके बाद अयोध्या वापस जाना, आगे अयोध्या कांड में क्या क्या हुआ हम आगे सुनेंगे। इसी के साथ ही विराम देते हैं, अब आरती।